Ram 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
ख्यातश्च भुवि सर्वदा
ख्यातश्च भुवि सर्वदा श्रुतं मया संस्कृतम् श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम् श्रीगर्ग उवाच अधुनामहम् आचार्यः ज्ञातश्च भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम् गर्ग उवाच गर्ग मुनि ने कहा यदु नाम यदु कुल का अहम मैं हूँ आचार्य पुरोहित ख्यातश्च पहले से यह ज्ञात है भुवि सर्वत्र सर्वदा सदैव सुतम पुत्र को मया मेरे द्वारा संस्कृतम संस्कार संपन्न से तुम्हारे मन्यते माना जाएगा देवकी सुतम देवकी पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य जॉइंग रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद गर्ग मुनि ने कहा हे नंद महाराज मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ यह सर्वत्र सर्वविदित है अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न करता हूँ तो कंस समझेगा कि वे देवकी के पुत्र है। तात्पर्य गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि कृष्ण
यशोदा के नहीं है बल्कि देवकी के पुत्र हैं, क्योंकि कम से पहले से ही कृष्ण की खोज में था। अतः यदि गर्ग मुनि संस्कार करते तो कंस को पता चल सकता था और इससे महान संकट उत्पन्न हो जाता। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित थे और नंद महाराज भी यदुवंशी थे, किंतु नंद महाराज क्षत्रिय कर्म नहीं कर रहे थे। इसलिए गर्गाचार्य ने कहा, यदि मैं आपको आपके पुरोहित के रूप में कर्म करूं तो इसे पुष्टि होगी कि कृष्ण देवकी पुत्र हैं। ज्ञानग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्मैष्टमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीशाकान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धौ दीनबन्धौ च वर्तते गोपेषु गोपिकाकान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक गर्गाचार्य के द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक है। तो ये श्लोक में बहुत गूढ़ तत्व है जिसको जानने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम यही जानते आ रहे हैं कि वात्सल्य रस का वर्णन इन अध्यायों में हुआ है। वात्सल्य रस का मूल भाव रहता है कि मैं कृष्ण को रक्षा करूं, लेट मी प्रोटेक्ट कृष्णा। चाहे कोई भी वात्सल्य, कोई भी स्तर के वात्सल्य भक्त क्यों ना हो, वैसे कृष्ण सारे संसार को देखभाल करते रक्षा करते हैं। लेकिन भक्त के हृदय में ऐसी भावना रहता है कि मैं ऐसे कृष्ण जो सारे जगत को रक्षा करते हैं मैं उनका रक्षा करूं। ऐसे देखा जाए यशोदा मैत्री में तो रहता ही है, देवकी और सुदेव के सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए उस समय देवकी और सुदेव ने प्रणाम किया, स्तुति की। उस स्तुतियों में उन्होंने वर्णन किया, हे भगवान आप सबके रक्षक हो, तीनों गुणों से परे हो, सब कुछ आपसे उत्पन्न होता है। अनेकों सुंदर शब्दों के द्वारा देवकी और वसुदेव ने कृष्ण का स्तुति किया और तुरंत उसके बाद कहते हैं कि हमको बहुत डर लग रहा है कि कंस आके आपको कुछ मार ना दे, क्योंकि उनको पता लगेगा कि आप भगवान हो और वो भी मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो, तो वो आपको मार देगा, इसलिए आप छोटे बच्चे के रूप में हो जाइए। अब अपना जो भगवत तत्व है उसको दिखाइए मन। हो सकता है मेरे भाई मेरे पर दया करके सोचेगा ये बच्चा थोड़ी ना मुझे मारेगा, हो सकता है कब छोड़ दे, इसलिए आप मुझे हमको डर लग रहा है, तो इसलिए आप कंस कुछ भी कर सकता है, आपको मार भी सकता है, इसलिए आप क्या करो, आप छोटे बच्चे के रूप में हो जाओ। तब कृष्ण ने कहा कि अभी तो बड़े बड़े बातें कह रहे थे आप, मैं भगवान हूं, मैं यू हूं, ये हो, अभी बोलते कंसा कि मुझे मारेगा, इतना तो विश्वास रखो कंस मुझे नहीं मारेगा। तब देवकी ने कहा आप कुछ भी हो लेकिन मेरे पुत्र तो होना, तो आपको मारेगा करके वो डर है, वो डर तो मेरे हृदय से जाएगा नहीं। एक तरीके से मैं जानती हूँ कि आप भगवान हो, लेकिन साथ साथ मैं जानती हूँ आप मेरे पुत्र हो, मेरा कर्तव्य बनता है आपको रक्षा करना, तो प्रोटेक्ट यू, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम बच्चे बन जाए, मैं कहीं आपको छुपा के रख दूंगी। तो प्रोटेक्शन, जैसे नंद महाराज इत्यादि, संदीपुर मुनि, खासकर गर्गाचार्य भी वात्सल्य रस के भक्तों में से आते हैं, और उनका जो संदीपुर मुनि के स्तर में आते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, 8 प्रकार के वात्सल्य रस को मेरे भक्तों का वर्णन किया गया है। 8 प्रकार के भक्त मतलब 8 स्तर के भक्त। सबसे पहला नंबर आता है यशोदामय का, नंद महाराज का, जो जिन ग्वाल बालों को भगवान ने चुराया था, ब्रह्मा जी ने चुराया था, उनकी माताएं गाय, और उसके बाद देवकी, वसुदेव, कुंती महारानी और संदीपनि गर्गाचार्य, ये 8 स्तर के भक्त है जिनको रत्नसामर सुनने में बहुत अच्छी तरह से वर्णन हुआ है। भले ही इन 8 स्तर के भक्तों में अनेकों अनेकों भेद हैं, अनेकों अनेकों प्रकार के विचार हैं भगवान के प्रति, लेकिन स्थायी भाव वात्सल्य होने की वजह से उनके अंदर भगवान को रक्षा करना है ये भावना जरूर रहता है। अभी आप सबको मालूम है वसुदेव उधर है, वसुदेव ने गर्गाचार्य को कहा तो जरा जाके देखिए गोकुल में क्या हो रहा है। गर्गाचार्य त्रिकालज्ञ है, साधारण नहीं है, त्रिकालज्ञ है। इसलिए पिछले के पिछले श्लोक में, ये 7वां है, 5वां श्लोक में, जब गर्गाचार्य आए थे व्रज में, तो नंद महाराज ने उनको स्तुति किया। स्तुति करते हुए ने सबसे पहला उन्होंने कहा ज्योतिषाम अयनम साक्षात, ज्योतिषाम अयनम साक्षात। उन्होंने कहा कि आप ज्योतिष शास्त्र की प्रणेता हो, ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र जानते हो, वो आप साक्षात की प्रणेता हो। तो ज्योतिषाम, ज्योतिष शास्त्र क्या है उसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योति मतलब लाइट, प्रकाश। कोई भी कार्य करना है आपको ज्योति की आवश्यकता है, कोई प्रकाश की आवश्यकता है, कोई प्रकाश के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए कोई वैदिक कार्य करना होता है ज्योतिष शास्त्र जो है अनिवार्य है, ज्योतिष शास्त्र के बिना कोई वैदिक कार्य संपन्न नहीं होता है। इससे ज्योतिष शास्त्र के वास्तविक प्रणेता हैं, मूल प्रणेता हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, और वो सूर्य देव के द्वारा ज्योतिष शास्त्र को इस जगत में प्रकाशित करते हैं। लेकिन साथ साथ में यही ज्योतिष शास्त्र को अनेकों अनेकों लोगों के द्वारा और भी प्रकाशित किया गया है। पराशर मुनि के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में पराशर के द्वारा स्थापित जो ज्योतिष शास्त्र है उसके द्वारा वो ज्यादा चर्चा वगैरह करते हैं। दक्षिण भारत में गर्ग ऋषि के द्वारा, गर्ग मुनि के द्वारा लिखा गया जो ज्योतिष शास्त्र है उसके द्वारा है। श्रीपाद वल्लभाचार्य श्लोक की टीका में कहते हैं आयनम, आयनम का अर्थ है ऐसा नहीं कि गर्गाचार्य ने कहीं इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके रखा है, नहीं, स्वतः उन्होंने एक ज्योतिष शास्त्र की प्रणाली को स्थापना किया है। इसलिए ये तत्ज्ञानम अतीन्द्रियम, तो ये ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हमको ज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है। अतीन्द्रियम हमारे इंद्रियों से जो परे ऐसा कुछ चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है वो ज्ञान हमको प्राप्त होता है। साधारण स्थूल रूप में जो हमारी चक्षुओं के द्वारा जो दिखाई नहीं पड़ता है वो चीज को हम उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा देख सकते हैं। बाद में कहा प्रणीतम भवतः येन पुमान वेद परम, तो ये जो शास्त्रों के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा एक व्यक्ति का इतिहास पहले क्या था, उसके इसके प्रभाव की वजह से, पहले किए गए कर्मों की वजह से अभी जो घटनाएं घट रही है वो क्या क्या अनुभव कर रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है, इन सब का बताया जा सकता है। क्योंकि हर माता पिता का चिंता रहता है, जैसे बच्चा जन्म हुआ तो चिंता रहती है कि मेरा बच्चा क्या होगा, बड़ा होके क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंता है हर माता पिता का। अगर इस प्रकार का चिंता नहीं रहेगा वो माता पिता नहीं माना जाते। जैसे इधर नंद महाराज और देव यशोदा और नंद महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण को पुत्री रूप में प्राप्त किए, लेकिन की चिंता क्या कर रहे हैं, पता नहीं मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा कि नहीं, अच्छा हेल्दी रहेगा कि नहीं, उनका स्वास्थ्य शरीर रहेगा सही रहेगा कि नहीं, इसकी चिंता थी। अगर कोई चिंता रहेगी उस चिंता को दूर करने के लिए स्वाभाविक तरीके से वो जानना चाहते हैं। इसलिए नंद महाराज ये गर्गाचार्य को ने कहा कि आप ये जो ज्योतिष शास्त्र जानते हो इसलिए मेरा पुत्र का हाथ देखिए, उनका जन्म कुंडली देखिए, देख के क्या कीजिए, नाम संस्कार कीजिए। अभी केवल ज्योतिष शास्त्र जानने मात्र से वो बड़े विद्वान नहीं होते। ज्योतिष शास्त्र जानने के साथ साथ में ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अगर होना है तो उनको ब्रह्म का ज्ञान भी होना चाहिए, भगवत ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे 5वें श्लोक में गर्गाचार्य की ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता के रूप में गुणगान करने के बाद 6वें श्लोक में नंद महाराज सही विषय पे आते हैं। क्या कहते हैं, त्वम ही ब्रह्म विधान श्रेष्ठ, त्वम ही ब्रह्म विधान श्रेष्ठ, आप ही ब्रह्म विधान श्रेष्ठ। सारे जो ब्राह्मण हैं या ब्रह्म विद्या जो जानते हैं उनमें से श्रेष्ठ हो। क्यों श्रेष्ठ हो, क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता होने के साथ साथ में आप ब्रह्म ज्ञान भी जानते हो, तत्व ज्ञान भी जानते हो, भगवान कौन है वो भी जानते हो, इसलिए आप श्रेष्ठ हो। तुम ही ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ, इसलिए मैं चाहता हूं क्या करो, संस्काराम कर्तुम अर्हति। हाँ, आप संस्कार करने में बहुत निपुण हो, आप कर सकते हो। बालयोर अन्योर नाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु, इसलिए मेरे बच्चे का क्या कीजिए, ये जो बालयोर अनयोर नाम, आप मेरे बच्चे का नाम संस्कार कीजिए। यानी कृष्ण का नाम संस्कार पहले हो चुका था, तृणावर्त का वध के पहले हो चुका था, लेकिन विष्णुदेव गोस्वामी भूल गए थे। चलो नाम संस्कार का वर्णन करता हूँ, आई एक्सप्लेन टू यू नाउ, क्योंकि तृणावर्त का जो लीला है वो 1 साल की उम्र में कभी हुआ था, लेकिन उसके पहले ही नाम संस्कार हुआ था कृष्ण का, कृष्ण बलराम दोनों का। तो ये नाम संस्कार लीला को क्यों भूल गए थे, पहले ही क्यों ना वर्णन किया, क्रम में क्यों वर्णन किया। तो उधर एक जगह लिखा गया है, जब व्यक्ति के अंदर भावावेश होता है उस समय क्रम को भूल जाता है। इसलिए इस वैदिक शास्त्र में इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये सब क्रम का इतना महत्व नहीं दिया जाता है। जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का वात्सल्य का आस्वादन यशोदा ने कैसे किया, पहला उसका वर्णन किए, बाद में नंद महाराज ने कैसे आस्वादन किया उसका वर्णन है। क्योंकि यशोदा का वात्सल्य नंद महाराज से ऊंचा है। अभी यशोदा का वात्सल्य का पूरा वर्णन होने के बाद, यानी तृणावर्त का वध के समय, पूरा यशोदा का वात्सल्य है। अभी नंद महाराज ने किस प्रकार वात्सल्य का अनुभव किया, क्योंकि पिता होते हैं उनके अंदर जो भाव होता है पुत्र के प्रति वो तुरंत व्यक्त नहीं करते, अंदर ही अंदर अनुभव करते हैं और संकुचित करके रखते हैं, आंखों में प्रणयाश्रु आता है बस। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो है अच्छा काम किया तो माँ तो उनको खुलेआम सबको मोहल्ले में सब बुलाती है कि मेरा बेटा ऐसा किया, ये किया, सब करने लग जाती है। लेकिन पिता जो है वो ऐसे चुपचाप रहते, कुछ नहीं बोलेंगे, वो केवल आंखों में आंसू रहेगा और यार इतना अच्छा बेटा है, ऐसा वो विचार करते हैं। ये स्वभाव है, इस जगत में भी हम देखते हैं, कभी हमने नहीं देखा पिता जो है पुत्र को ऐसा आलिंगन किया हो, किया मेरा बेटा हो, ये सब चीजें थोड़ा ये पाश्चात्य सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार पिता अपने पुत्र के प्रति जो वात्सल्य है वो हृदय में ही अनुभव करते हैं, वो बहिरंगिक शारीरिक तरीके से व्यक्त नहीं करते, लेकिन माँ कर देती है, माँ उनको आलिंगन करती है, सुनती है, वो सबको बुलाती है, देखो मेरा बेटा ये है, सब बोलती है। लेकिन पिता ऐसा नहीं करते, पिता थोड़ा रिजर्व रखते हैं। अभी इसलिए नंद महाराज के मन में चल रहा है मेरा पुत्र का भी नाम संस्कार हो, क्या नाम होगा, क्योंकि नाम जो रखते थे वैसा नहीं कि जो मन में है और रह सकते थे। ऐसे पाश्चात्य देश में, अन्य देशों में, खासकर के चाइना में सामने सुना कि जब बच्चा का जन्म होता है तो किचन में जाके एक बर्तन गिराते हैं, तो जो आवाज आया वो आवाज उसको रख देते हैं, उसका नाम है। पिंग पोंग पोंग ऐसा कुछ रख देते टुंग टोंग ऐसा कुछ रख देंगे जो भी है। उसका कोई सिद्धांत नहीं, उसके कोई ये नहीं है। तो उस समय ये जो नाम संस्कार, नामकरण संस्कार के समय दूसरा बार ज्योतिष आते हैं। जन्म के समय ज्योतिष आते हैं, क्योंकि जन्म के समय जब ज्योतिष आएंगे वो ये बच्चे का भविष्य में क्या करेगा, भविष्य का वर्णन बहुत किया जाता है। लेकिन जब नाम संस्कार के समय ज्योतिष आते हैं तब वो भविष्य का ज्यादा चर्चा नहीं, उसका स्वभाव का चर्चा होता है, उसका क्या स्वभाव रहेगा, तो उस स्वभाव के अनुसार उनका नाम रखा जाता है। तो अभी ये बहुत डिटेल है, ज्योतिष शास्त्र अगर थोड़ा बहुत कोई जानता है तो भविष्य का चर्चा जो इतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होता है। लेकिन आजकल सब लोग बोलते हैं मेरा भविष्य क्या बताइए, भविष्य क्या बताइए। एक व्यक्ति का स्वभाव जो है वो जानना, वो ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, प्रयोग है। क्यों? क्योंकि उस स्वभाव के अनुसार उस व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, उस स्वभाव के अनुसार उनको उस प्रकार की शिक्षा दिया जा सकता है। जैसे किसी के अंदर क्षत्रिय का गुण है, समझ लीजिए, अगर उसको आप वेद पढ़ाओगे, पाठ पढ़ाओगे, बोलो वो करो ये करो, तो वो उनको जिमेगा नहीं। अगर किसी के अंदर ब्राह्मण का स्वभाव है, उनको पढ़ाओ, उनको नीति शास्त्र पढ़ाओ, बोले क्या चल रहा है सर, उनको जिमेगा नहीं। इसलिए स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को शिक्षा दिया जाता था। ऐसा नहीं कि माता पिता ने सोचा मेरे बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, मेरे बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, हो सकता है उसके अंदर व्यापार करने की प्रवृत्ति हो, तो वो उसकी वजह से जितने बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके स्वभाव के अनुसार जो है वो उनको शिक्षा नहीं देते, स्वभाव के अनुसार उनको नाम भी नहीं देते, क्योंकि वो ज्योतिष शास्त्र का आधार नहीं है। जैसे प्रेम के वश कुछ भी कोई पुकार सकता है, लेकिन फिर भी देखिए एक जगह प्रभुपाद जी ने कहा कि मान लो कि एक माँ है, तो एक बच्चा है उनको, लेकिन अंधा है, लेकिन फिर भी वो माँ उनको बोलती कमल लोचन है अंधा, लेकिन उनको कमल लोचन बोलती है, प्रभुपाद इसका स्टोरी है, क्योंकि प्रेम वश बोलती है। लेकिन अस्तित्व में उनको देखेंगे उनके कर्म के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार उनका नामकरण होगा। जैसे आप कौरवों का नाम देखिए, जितने भी सौ के पुत्र है गांधारी का, सबका नाम दू से शुरू होता है, दू मतलब दुष्ट है। सभी अलग अलग प्रकार के दुष्ट है, सौ प्रकार के दुष्टों का देख, लेकिन उसको देख के गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों बहुत खुश हो गए थे, चलो मेरा दुर्योधन। तो नामकरण भी ऐसा नहीं कि विम्सिकली होता है, ठीक है हमको ये अच्छा लगता है, नहीं हमको ये अच्छा लगता है, नामकरण इस प्रकार नहीं होता है। जो उनके राशि है, उनका जो गुण है, उसके अनुसार नाम जो ज्योतिष के प्रणेता होते हैं वो बोलते हैं, उसके अनुसार वो नाम रखा जाता है। ठीक है, अभी ये विषय इधर ये है कि संस्कार, तो केवल ज्योतिष शास्त्री नहीं जानते थे गर्गाचार्य, तो ब्रह्म विदः, इसलिए कहा कि ज्योतिष उनको क्या कहा, त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म विद्या को जानने वाला में आप श्रेष्ठ हो, संस्काराम कर्तुम अर्हति, मैं चाहता हूं कि आप जो है संस्कार कीजिए। इसलिए केवल ज्योतिष शास्त्र जानने वाला ही संस्कार करने का अधिकारी नहीं होता है, ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ में उनको भगवत ज्ञान भी होना चाहिए। भगवत ज्ञान के बिना अगर कोई व्यक्ति संस्कार करता है तो संस्कारों का इतना फायदा नहीं रहता है। बालयोर अंजन नाम जन्म नाम ब्राह्मण गुरु, तब गर्गाचार्य ने कहा मुझे बोल रहे संस्कार करने का, लेकिन संस्कार करने का अधिकार जो है केवल गुरु का होता है, ऐसा नहीं कि किसी के पास जाके संस्कार कर लिया, नहीं, केवल गुरु का अधिकार होता है संस्कार करने का। तब उसके विषय में कहते हैं जन्मना ब्राह्मण गुरु हूँ, आप जन्मना ब्राह्मणो गुरु, आप जन्मतः ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है वो स्वाभाविक तरीके से सारा समाज का गुरु होता है, इसलिए आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप मेरे गुरु हो कि नहीं, हमारे कुल गुरु हो कि नहीं, आपको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं, आप ही हमारे गुरु हो क्योंकि आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होने के नाते वो सबका गुरु है, इसलिए आप संस्कार कीजिए मेरे पुत्र का। तो वसुदेव बड़े आवेश पे आतुरता से वो सोच रहे कि मेरा पुत्र का क्या नाम होगा, देखिए मेरा पुत्र का क्या नाम होगा, जैसे सब लोग का दीक्षा के समय आतुरता रहता है मेरा क्या नाम होगा मेरा क्या नाम पड़ेगा, तो सब एक्साइटमेंट वही है, पूरा दीक्षा में सब लोग इंतजार करते हैं मेरा नाम क्या बोलने वाले महाराज बैठे मेरा नाम पुकारेंगे, अभी नया नाम आने वाला है, बड़ा उत्साह रहता है। एक बार दीक्षा के समय महाराज जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, उसने कहा अभी आप आपको सबको नाम दिया जाएगा, आप चिंता मत करो कि आपको अच्छा नाम मिला किसी को बुरा नाम मिला, लेकिन सबका नाम दास है, सबको दास नाम मिलने वाला है, इसकी आप ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन बात यह है कि पिताजी को स्वाभाविक तरीके से आतुरता रहता है कि मेरे पुत्र का क्या नाम होगा, इसे नाम संस्कार का सेरेमनी उन्होंने निवेदन किया। लेकिन जैसे नंद महाराज से गर्गाचार्य ने इस बात को सुना, गर्गाचार्य भी वैसे तो आठ वात्सल्य रसों की लिस्ट में उनका नाम उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन संदीपनी मुनि के स्तर में उनका भी वात्सल्य भक्तों में लिस्ट आता है, नाम आता है कहीं और, तो वे वात्सल्य है। अभी गर्गाचार्य को बड़ा उत्साह आया, चलो मैं कृष्ण का नाम, सच में कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखेंगे, वात्सल्य है मैं उनका नाम रखूंगा। लेकिन फिर भी बात क्या आया उनके मन में, दो बातें आई। सबसे पहला बात यह है कि नामकरण संस्कार जो है उस समय ऐसा शास्त्रों में विधि है कि उन्हीं लोगों को बुलाना चाहिए जो उस बच्चे से प्रेम करते हैं, और इतना हद तक कि किसी को अन्य लोग जो है खास करके जो दुष्ट होते हैं उनको मालूम नहीं पड़ना चाहिए, असुरों को खास करके मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अन्य संस्कारों में असुरों को निवारण करने के लिए, इनको भगाने के लिए संस्कार किया जाता है, अनेकों जात संस्कार है, बहुत सारे संस्कार है, उसका विधि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी सत्या सारजी का वर्णन किया, लेकिन खास करके ये जो राम संस्कार है वो थोड़ा संकुप्त रूप में किया जाता है। ऐसा नहीं कि मेरा हमारा बेटे का नाम संस्कार है, आप सब लोग आइए, नहीं, उसमें मैं और कुछ ही लोग रहते हैं। अन्य संस्कारों में बहुत बड़ा फीस्ट कर सकते हैं सब कुछ, ये शास्त्र की बात है। लेकिन पिता का जो स्वभाव क्या रहता है, मैं सबको बुला के बड़ा प्रोग्राम करूंगा सबको। अभी नंद महाराज वैश्य होने के नाते गर्ग महाराज सोचे, उनको डर लगा कि नंद महाराज ये सब बातों को समझे नहीं, ये सब समझेंगे नहीं वैदिक विधि विधान को, उनका भावावेश तो रहेगा क्योंकि वैश्य का प्रवृत्ति है क्या है, कुछ भी कराएं तो सबको बुला के करें, दिखाऊं सबको अभी ये बात मैं उनको कैसे समझाऊं। तो गर्गाचार्य के मन में चल रहा था निश्चित रूप में नंद महाराज सारे रज को बुलाने वाले, मथुरा जाके वसुदेव को बुलाने वाले, कंस को भी बुलाने वाले हैं क्योंकि उनके पुत्र के प्रेम में सब भूल जाएंगे। जब किसी के प्रति आपका प्रेम रहता है आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है कि नहीं, नंद महाराज कृष्ण की प्रेम में ये भूल जाएंगे कि ये नामकरण संस्कार है, उसमें असुरों को बुलाना नहीं चाहिए, तो उनको क्या होगा, बड़े बड़े हो जाएंगे, बुद्धि का काम बुद्धि प्रयोग नहीं होगा, बुद्धि काम नहीं करेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, इससे गर्गाचार्य को बहुत डर लगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वसुदेव और देवकी के जो भक्ति है प्रेम है वात्सल्य, उससे गर्गाचार्य के दिल में, क्यों, क्योंकि गर्गाचार्य की बुद्धि अभी चल रहा था, जब तक बुद्धि चलता है तब तक प्रेम कहां है गर्गाचार्य का बुद्धि चल रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो अभी वसुदेव को मैं कैसे समझाऊं, अगर उनको समझाऊं कि वेदों का ऐसा विधि है कि ये जो नामकरण संस्कार जो है वो गुप्त रूप में होना चाहिए तो ये समझने वाले नहीं है, इसलिए मुझे उनको समझाना होगा। अगर आप सीधे बातों से नहीं समझा सकते किसी को, डर से समझा सकते, डर ऐसा चीज है जिसके द्वारा हर व्यक्ति समझ जाता है, जैसे बच्चे को बोलो अच्छी तरह से पढ़ाई करो तो नहीं पढ़ेगा, अगर उसको बोलो देखो अगर नहीं पढ़ाओगे तो ये डंडा है ना, तो डर से वो पढ़ना शुरू करता है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ोगे तो ये होगा वो होगा, तुमको फेल होना पड़ेगा, रास्ते में जाना पड़ेगा, भिखारी बनना पड़ेगा, तो ऐसा बोलोगे तो बच्चा पढ़ना शुरू करता डर के मारे। अभी ये श्लोक का प्रसंग ये है कि गर्गाचार्य क्या कर रहे हैं, नंद महाराज के मन में डर को उत्पन्न करा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या डर उत्पन्न करा रहे हैं। यदु नाम अहम आचार्य, ने कहा यदु का आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है, यदु नाम सारे यदु में अहम आचार्य, मैं आचार्य हूं सारे यदु में, और ख्यातश्च भुवि सर्वदा, ऐसा नहीं कि एक दो लोग जानते हैं, ये बात सर्वदा हर व्यक्ति जानता है पूरा जगत में, भुवि सर्वदा, और ख्याति है मेरी, ऐसा नहीं कि लाइटली ले लेंगे, मैं जहां जहां जाता हूं सब लोग मुझे इस प्रकार बुलाते हैं, क्या है यहाँ यदुवंश के आचार्य है, यदुवंश के पुरोहित है, यदुवंश के आचार्य यदुवंश के पुरोहित है। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी स्तम, अभी उनको थोड़ा सा बता रहे क्या कह रहे हैं, सुतम मया संस्कृतम ते, अगर मैं तुम्हारा पुत्र को कृष्ण को अगर मैं क्या करूं संस्कार करूं तो क्या होगा, मन्यते देवकी सुतम, हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा, क्या मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा पुत्र देवकी का पुत्र है, कृष्ण जो है वो देवकी का पुत्र है, तो सबको मालूम पड़ जाएगा। ये इस बात के द्वारा गर्गाचार्य बहुत सारे बातों कह दिया नंद महाराज को, क्या कह दिया, ये आपका पुत्र जो है वो कौन है, वो आपका नहीं है, किसका है, देवकी का पुत्र है, यशोदा का पुत्र नहीं है। तो असल में ये बताने पर भी, आगे आता है, ये बताने पर भी नंद महाराज को समझ में अभी तक हमने यशोदा की वात्सल्य का आस्वादन किया, उनकी महिमा वर्णन किया, अभी नंद महाराज का वात्सल्य का महिमा ये है। गर्गाचार्य क्या कह रहे हैं इसमें कि देखो अगर ये करेंगे सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा, क्या मालूम पड़ जाएगा, हाँ? कि कृष्ण कौन है, देवकी का पुत्र है। लेकिन ये नंद महाराज सुनने के बाद भी उनको जरा सा भी कुछ होश नहीं है, ठीक है ऐसा मान जाएंगे, असल में मेरा पुत्र है लेकिन मान जाएंगे। तो ये मन्यते का दो अर्थ है, मन्यते का एक अर्थ है कि गर्गाचार्य के दृष्टिकोण से कि सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये किसका पुत्र है, देवकी का पुत्र है। तो नंद महाराज के दृष्टिकोण से ये मन्यते का शब्द का अर्थ क्या है, अच्छा सब लोग ऐसा मान लेंगे ये तो मेरा पुत्र ये है मेरा पुत्र, लेकिन ऐसे मान सकते वो इससे मान सकते, अगर वो मान दिए तो क्या हो जाएगा, तो मालूम पड़ जाएगा कंस को मालूम पड़ेगा, आके तो कुछ तकलीफ देगा, मेरा पुत्र को कुछ तकलीफ होगा या कष्ट होगा या व्रज में सब लोगों को ये होगा, इतना ही नहीं हमारे आचार्य को तकलीफ होगा, क्योंकि कंस आके क्या कहेंगे गर्गाचार्य को, तुमने ऐसा क्यों किया मेरा परमिशन के बिना, और साथ साथ में भी तकलीफ होगा, हम दोनों से ज्यादा कृष्ण को तकलीफ होगा, सारे ब्रजवासियों को तकलीफ होगा। इस प्रकार नंद महाराज के हृदय में उन्होंने डर उत्पन्न कराया। तो ये जो भय है ये स्वभाव है, वात्सल्य रस में जो भय मेरा पुत्र का क्या होगा, ये भय अनुभव करना ये स्वभाव है। जैसे इधर नंद महाराज को गर्गाचार्य अनुभव करा रहे, साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी गर्गाचार्य वर्णन करते हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य उस सिद्धांत को इस श्लोक की टीका में प्रकाशित करते हैं। वो कहते हैं कि एक है हमारी संपत्ति, दूसरा है संस्कार, तो इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, इन दोनों में श्रेष्ठ है हमारी संपत्ति। इधर संपत्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, तो संस्कार करना महत्वपूर्ण है या कृष्ण की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, इन दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है, कृष्ण की रक्षा जो है महत्वपूर्ण है। कृष्ण की रक्षा का अर्थ क्या है, कृष्ण का कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति भावना जो है वो महत्वपूर्ण है। जब संस्कार में और कृष्ण की भक्ति में इन दोनों में जब विरोधाभास होता है, तब गर्गाचार्य कहते हैं आप संस्कार को कम ध्यान देना चाहिए और कृष्ण की रक्षा का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि नंद महाराज के मन में ऐसा था कि कृष्ण का जब जन्म हुआ अगला दिन जो है बड़ा जन्माष्टमी मनाए, नंदोत्सव मनाए, कितना बड़ा वर्णन है नंदोत्सव का, लेकिन कितना सुंदर तरीके से सब लोगों को आमंत्रण किए, सब किए, नंद महाराज कैसा था उससे बढ़िया करेंगे, लेकिन सब बच्चों का ऐसा रहता है ना कि अच्छा फेस्टिवल अगला फेस्टिवल और अच्छा करेंगे। नंद महाराज की अनमेंट था नाम संस्कार जो फेस्टिवल है बहुत अच्छी तरीके से बड़ी तरीके से करेंगे, लेकिन वो तो तभी समझेंगे जब उनके मन में डर हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गुप्त रूप में कर देना चाहिए। इसलिए गर्गाचार्य के गर्ग ऋषि के जो ये प्रवचन के द्वारा नंद महाराज समझ गए कि मुझे ये कार्य कैसे करना चाहिए, गुप्त रूप में करना चाहिए, क्योंकि अभी संस्कार महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? कृष्ण का रक्षा महत्वपूर्ण है, यानी कृष्ण की भक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है। जब भी इन संस्कार और भक्ति के बीच में विरोधास्पद बातें विरोध होता है, जब दोनों के बीच में कोई विरोध नहीं है तो आप दोनों को साथ में कर सकते हो, लेकिन जब इन दोनों में विरोध होता है तो गर्गाचार्य कहना यह है कृष्ण की रक्षा महत्वपूर्ण है, आपका फेस्टिवल बड़ा बड़ा चीजें जो छोड़ो और एक क्या करो संस्कार तो करना ही है, तो कैसे करो? गुप्त रूप में कर दो, डू इट वेरी सीक्रेटली। तो इसलिए ये गर्गाचार्य का श्री विश्वनाथ ठाकुर इस श्लोक की टीका में कहते हैं और एक आगे एक बात कहते हैं कि नंद महाराज ये कह सकते हैं किसको? गर्गाचार्य को। मैं भी तो यदुवंश का हूं, मैं भी तो यदुवंश का हूं। आपको मालूम है नंद महाराज और वसुदेव उनके जो पूर्वज थे एक ही पिता थे, उनके एक क्षत्रिय पत्नी थी, वैश्य पत्नी थी। जो क्षत्रिय पत्नी से सब प्रकट हुए क्षत्रिय बने, उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र के रूप में वसुदेव आए। जो वैश्य की पत्नी से जो वंश आया तो उनका पुत्र के पुत्र के पुत्र जो है वो नंद महाराज बने। तो इधर उसके जवाब में गर्गाचार्य कहते हैं भले ही आप भी यदुवंश के हो लेकिन लोग उसको इतना ध्यान नहीं देते, उतना ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन प्रसिद्धि जो है वो क्षत्रिय का ज्यादा होता है। क्षत्रिय कौन सा वंश का है उसका वर्णन ज्यादा विख्यात रहता है। ये वैश्यों का परिवार में कौन से वंश के है वो ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। ये समाज में अभी भी देखते हैं, कोई बोलते है कि मैं क्षत्रिय हूं तो कौन सा वंश का है, या कौन से वंश के है, राज सूर्य वंश का, चंद्र वंश का है, ऐसा उनका रहता है। कभी कभी वैश्य होते हैं वो उनका जो सरनेम है वो भी कभी बोलते नहीं है, वो छुपा देते हैं, या रखते भी है तो वो समाज के हिसाब से एक सरनेम रखते हैं। लेकिन क्षत्रियों में उनका जो पिता कौन है, उनके पिता का पिता कौन है, उनका पूरा लाइनेज रखा जाता है और विख्यात रहता है ये इस वंश के हैं करके। इससे गर्गाचार्य कहते हैं भले ही आप भी ये यदुवंश के हो लेकिन लोग ज्यादा जानते नहीं है इसको, लेकिन निश्चित रूप में अगर मैं इसका संस्कार करूंगा तो क्या होगा? सब लोगों को सब लोग जान जाएंगे, समझ जाएगा और आगे करेंगे। इसलिए क्या करो? संस्कार मत करो। नहीं, मैं करूंगा संस्कार, लेकिन कैसे करूंगा? गुप्त रूप में करूंगा। तो ये बात इस श्लोक में प्रकाशित किया गया है। हरे कृष्णा। उनको प्रश्न है हाँ, गर्गाचार्य का इज ऑल साइन वात्सल्य, नॉट दैट हाई क्लास वात्सल्य। जैसे संदीपन मुनि है उसी कैटेगरी में आते हो, संदीपन मुनि टीचर, लेकिन है वो थोड़ा सा शिव के भक्त भी थे, तो ऐसा वर्णन आता है कि संदीपन मुनि के पास क्यों जाके कृष्ण सीखे, क्योंकि अगर वो कृष्ण के विशुद्ध विशुद्ध भक्त है तो कृष्ण को थोड़े सिखाएंगे मेरे शिष्य बन नहीं हो पाएगा, शिक्षा दीजिए बात, इससे थोड़ा उनको हाँ ऐसा होना। इसलिए आप उज्जैन जाइए, उधर संदीप मुनि का आश्रम में बड़ा शिवलिंग है और कृष्ण में शिव को पूजा करते थे, उधर उज्जैन में है अभी भी जाएंगे, कृष्ण का गुरुकुल जो है ना अभी भी है उधर, बड़ा सा मंदिर वगैरह सब है, ऐसा है। तो उन्हीं कैटेगरी में संदीप मुनि आते हैं। तो वसुदेव वो आप बकरे साम्राज्य खोलेंगे नेक्रो डिवोशन, उसके अंदर पेरेंटल अफेक्शन के चैप्टर खोलेंगे, उसके अंदर 8 कैटेगरीज है, उसके अंदर संदीप मुनि कम्स अध्ययन, तो उसकी कैटेगरी में गर्गाचार्य आते हैं। कृष्ण भावनामृत में एक है सीधा कृष्ण भक्ति, जैसे भागवत पढ़ना, जप करना, ठीक है, ये भौतिक परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं है, इसके ज्योतिष शास्त्र कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना में दूसरा एक भाव है, हमारी भौतिक कार्यों को कृष्ण की सेवा में लगाना, उसमें ज्योतिष शास्त्र आवश्यक है। जैसे कोई विवाह हो रहा है, किसी को किसी के साथ विवाह करना है, ज्योतिष शास्त्र की आवश्यक है। क्यों? विवाह जो है वो उसमें आध्यात्मिकता नहीं, वो भौतिक है, लेकिन उस विवाह को दो भक्त कर रहे हैं, दो विवाह कर रहे हैं, तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए या अनुकूल रूप में वो कर, तो कृष्ण की भक्ति और अनुकूल हो उस विवाह को और सात्विक बनाना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैंने उसको देखा, उससे मैंने देखा, दोनों पसंद आ गया, ये राजसिक है। तो राजसिक भावना, राजसिक कार्य कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। जैसे भोग बनाते हैं, कैसे भोग बनाते हैं? सात्विक चीजों को भगवान को भोग लगाते हैं कि नहीं? तो ऑफरिंग शुड बी ऑलवेज सात्विक। तो सात्विक विवाह क्या है? तो विवाह के पहले तक कोई एक दूसरे को देखा भी नहीं होंगे। मैं तो बचपन में भी देखा, बहुत सारे हमारे परिवार वाले, वो ना लड़का को मालूम है लड़की क्या, कौन है क्या, वो माता पिता तैयार करते हैं, ज्योतिष शास्त्र सब तैयार करते हैं, बाद में जिस दिन विवाह होता उस दिन एक दूसरे को देखते हैं। ये सात्विक है। तो ज्योतिष शास्त्र आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? कहाँ आवश्यक है, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए? किसी ने कहा, बहू जी ऐसा लगता है कि आज का ग्रह बराबर नहीं है, इसलिए मैं 12 बजे तक ग्रह बराबर नहीं है, 12 बजे के बाद मैं जप करूंगा। सच में ग्रह बराबर नहीं है इसका, क्योंकि ऐसा सोच रहे हैं ग्रह बराबर नहीं है कि नहीं? लेकिन अगर कोई कहे कि बाबू जी आज कोई विवाह होने वाला है, तो ज्योतिष के पास गया, उसके अनुसार ये टाइम में करना चाहिए, मैं ये टाइम में करूँगा, तो सही है, दैट इज ट्रू। तो इसलिए दो नियमित स्मरणे न काला, वो किसके लिए है? हरिनाम के लिए, भागवत के लिए। लेकिन अगर हरिदास ठाकुर जैसे हो, हैंड हरे कृष्ण बी हैप्पी, ठीक है, हरिदास ठाकुर जैसे नहीं है निश्चित रूप में, खासकर गृहस्थ है, उनको ये वैदिक सिद्धांत पालन करना। इसलिए भगवान भवेता में कहते हैं, आस्ता सनकादय लोक संग्रह आप भले ही जनक महाराज मुक्त थे, लेकिन सारे वैदिक संस्कार को पालन करते थे। क्यों करते थे? उनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करते थे। क्यों? लोक संग्रह आप ही, बहुत सारे लोग हैं उनको जरूरी करते थे। इतना ठीक है। हरे कृष्ण। मंत्राश्रम भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।
मद्रास संप्रदाय में